श्री गुरु भक्ति योग। शिष्य को आचार्य के घर रहना चाहिए। 12 वर्ष तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा कठिन तप करना चाहिए। उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा उनके मार्गदर्शन में पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो शिष्य को शिक्षा दे सके और स्वयं जो शिक्षा दें उसको अपने आचरण में भी ला सके, वही गुरु हो सकते हैं। आत्म साक्षात्कारी गुरु इस जमाने में सचमुच बहुत दुर्लभ है। सचमुच में आध्यात्मिक विकास कर लेने वाले व्यक्ति तब तक गुरु के रूप में फर्ज अपने सिर पर नहीं लेते जब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं होती। जब योग्य साधक आध्यात्मिक पथ की दीक्षा लेने के लिए गुरु की खोज में जाता है तब उसके समक्ष ईश्वर गुरु के स्वरूप में दिखते हैं और उसे दीक्षा देते हैं। जो मुक्तात्मा गुरु हैं वे एक निराली जागृत अवस्था में रहते हैं जिसे तुरीयावस्था कहा जाता है। जो शिष्य गुरु के साथ एकता स्थापित करना चाहता हो उसे संसार की क्षणभंगुर चीजों के प्रति संपूर्ण वैराग्य का गुण विकसित करना चाहिए। भागवत पुराण में भगवान वेदव्यास ने कहा है, यदि काम पर जय प्राप्त करनी हो तो देह की नश्वरता पर विचार करो, मृत देह को देखो, शव पर विचार करो व रोगी शरीरों की हालत देखो। लोभ को जीतना हो तो कमाए हुए धन का दान करो, और मोह को पराजित करना हो तो विवेक से काम लो। अहंकार को विजित करना हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखो। धन के अहम को जीतने के लिए अपने से अधिक धनी को देखो। विद्या के अहम को जीतना हो तो अपने से बड़े विद्वान को देखो। अपनी बुद्धि और चालाकी का अधिक गुमान हो तो अपने से अधिक चालाक लोगों में रहो। परंतु इन सब प्रयासों से दूर जिसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, जिसे गुरु भक्ति रूपी संजीवनी मिल गई, उसे काम दूर करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता। क्रोध दूर करने के लिए भी कोई अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक नहीं। अविद्वता दूर करनी हो तो विद्यालयों में जाइए, अनपढ़ हो तो अध्यापकों की दासता स्वीकार करिए। परंतु जिसने गुरुदेव की दासता प्राप्त कर ली वह अनपढ़ होते हुए भी विद्वानों को पढ़ाता है, नासमझ होते हुए भी समझदारों को समझाने की क्षमता रखता है, क्योंकि नास्ति तत्त्वम गुरुः परम। शिष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि गुरु सेवा में अपना सर्वस्व लुटा दे। गुरु का यह स्वभाव ही होता है कि वह संप्राप्त आध्यात्मिक पूंजी का अपना संपूर्ण कोष शिष्य के हृदय में उढ़ेल दे। इसके बावजूद उनकी पूंजी में कोई अभाव नहीं आ पाता। जिस शिष्य में गुरु के प्रति अनन्य भाव नहीं जगता वह शिष्य आवारा पशु के समान ही रह जाता है, उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, ना घर का ना घाट का। उसके मन को पूर्ण विकसित हो पाने का अवसर नहीं मिलता। अधिक भटकने से उसका मन नास्तिक भाव में आ जाता है और वह खिन्नता अनुभव करने लगता है। पर जिसे सद्गुरु मिल गए हैं और जो सत शिष्य बन सका है उसके लिए परमात्मा के प्रेम भाव का झरना फूट निकलता है। गुरु प्रसाद, गुरु कृपा जब हृदय में प्रविष्ट होती है तब आह, गुरु प्रसाद क्या वस्तु होती है यह यदि जानना हो तो किसी गुरु भक्त के हृदय में झांक कर देखिए। गुरु प्रसाद का स्वाद क्या होता है यह यदि जानना हो तो किसी सत शिष्य के हृदय में झांक कर देखिए। तब आपको पता चलेगा देवतागण तो उस अमृत से वंचित रहते हैं जो अमृत गुरु भक्त को मिलता है। जिसे गुरु भक्त गुरु भक्ति से संप्राप्त कर पीता है उस अमृत से योगी जन भी वंचित रहते हैं। कर्मी तो इस अमृत से बहुत दूर रह जाते हैं। कर्मी कर्म कांड की शुद्धि में तो लगे रहते हैं परंतु हृदय की शुद्धि तो परम भाव से प्राप्त होती है। भाव के बिना वह संभव ही नहीं है, उससे वे वंचित रह जाते हैं। तीर्थों में स्नान करने से एक फल मिलता है परंतु यदि कोई गुरु भक्त मिल जाए और उसके सानिध्य में रहें तो चार फल मिलते हैं। गुरु भक्त के सानिध्य मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी गुरु भक्त से मित्रता करके देखिए, वह आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। उसका स्वभाव ही होता है कि वह आपको धार्मिक बनाकर ही छोड़ेगा, आपको ठूंठ नास्तिक ना रहने देगा। सच्चा गुरु भक्त आपको मिले तो धर्म का द्वार ही खोल दे। सच्चा गुरु भक्त ही संतत्व को प्राप्त होता है। संतों जैसा वेश बनाकर बैठ जाने वाले साधक संतत्व को प्राप्त नहीं होते। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ऐसे कोई संत मिल जाए, ऐसे गुरु भक्त मिल जाए तो हमें समझ में आएगा कि हम अब तक तो धुआं ही चाट रहे थे, पानी विलो रहे थे कि मक्खन निकलेगा, हीरों की धुन में पत्थर चुन कर व्यर्थ का भार उठाए फिर रहे हैं। ऐसे किसी विरले से भेंट होते ही कर्मकांडियों के तो होश ही उड़ जाएंगे। परमहंस राम कृष्ण देव की परीक्षा लेने एक पंडित आए। रामकृष्ण की मस्ती देखकर वे तो चकित हो उठे। उनका ईश्वरीय आनंद देखकर वापस लौटते हुए उन्होंने रामकृष्ण के शिष्यों से गदगद कंठ होकर कहा, गाड़ियां भरी जा सके इतने ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया है, पर आज जाना कि मैं तो व्यर्थ बोझ उठाए हूं। अमृत तो आपके रामकृष्ण जी पी रहे हैं और उनके कृपा प्रसाद का स्वाद आप लोग पा रहे हैं। हम तो मस्तिष्क में बोझा भरे हुए पंडित हो गए हैं। पुस्तकें पढ़ पढ़ कर गुरु बन जाने में कोई सार नहीं। ऐसे निगुरे गुरुओं की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल समाज में ऐसे किताबी गुरुओं की बड़ी भारी भीड़ हो गई है। कोई सद्गुरु का प्यारा मिल जाए तो चारों पुरुषार्थ के द्वार खुल जाए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वारों की क्या मजाल है कि वे बंद रहें। जब कोई सद्गुरु का प्यारा आपका हाथ पकड़ ले तो निश्चित जानिएगा कि आपके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वार बंद नहीं रह सकते। सत शिष्य का सानिध्य इतना लाभ पहुंचा सकता है और जब यह सत शिष्य सद्गुरु बनता है तब उसमें अनंत फल देने का सामर्थ्य उद्भूत हो जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज सत शिष्य में से सद्गुरु बने थे। कबीर साहेब सत शिष्य में से सद्गुरु बन गए थे, हो गए थे। इसी प्रकार विवेकानंद सतशिष्य में से सतगुरु हुए थे। सतशिष्यों की पावन कथाएं अपने हृदय को जितना पावन करती है, हमें जितना पुण्य प्रदान करती है, इतना पुण्य तो गंगा स्नान से भी नहीं मिलता। सद्गुरुओं और सतशिष्यों की चर्चा हमें जितना अमृत पिला सकती है, इतना अमृत पिलाने की शक्ति स्वर्ग के घड़े में कहाँ है? स्वर्ग का सुख और स्वर्ग का अमृत ऐसा कहाँ है? सतशिष्यों और सद्गुरुओं की गाथाएं सुनने से, समझने से जो रस मिलता है, अमृत बरसता है, वह स्वर्ग के अमृत को लज्जित कर देता है।